तो मैंने भी दिनों विश्राम किया। अगर विश्राम ना करें तो फिर कथा में भी नींद आती है, इसलिए विश्राम पर्याप्त कर लेना चाहिए कथा में नींद आए।
सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु ने सारे भक्तों को नृत्य करने के लिए प्रेरित किया और अंत में स्वयं भी नृत्य करने लगे। इस तरह उन्होंने सारे जगत को प्रेम आवेश से आप्लावित कर दिया। भक्त सब ना चाहिया नित्यानंद राय से नृत्य करे प्रेम जगत भाषाय। तो प्रेम नृत्य कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जगत भाषाय, सारे संसार को प्रेम में डुबो दिया नित्यानंद प्रभु ने। नित्यानंद प्रभु की जो शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, तो इतनी ज़्यादा उनकी प्रेम की शक्ति है कि चैतन्य महापुरुष स्वयं आ जाते हैं। तो अभी आगे वर्णन आएगा, है ना। तो जगत भाषा है, पूरे जगत को डुबा दिया। इसका मतलब क्या है कि जगत मतलब चैतन्य महाप्रभु को जो है कहा जा सकता है कि वो उनके शरीर में पूरा जगत है। अगर चैतन्य महाप्रभु को अगर प्रभावित कर दिया तो समझो कि पूरे जगत को, है ना। इसलिए यह जगत भाषा है ना। जो भक्त लोग होते हैं वो संपूर्ण जगत की सेवा करते हैं, और वैसे देखा जाए तो कोई जानता भी नहीं है। मान लीजिए आप जो है दिन रात कृष्ण की सेवा में लगे हैं, है ना, तो पूरा संसार नहीं जानता है कि आप जो है क्या कर रहे हैं, और जो दुनिया के लिए आप क्या सेवा कर रहे हैं। लोग कहेंगे ये दुनिया के लिए तो कुछ नहीं कर रहे, तो भगवान की सेवा में लगे हैं, हरे कृष्ण में लगे हैं, तो दुनिया का जो है कुछ भला नहीं कर रहे हैं। तो जो है भगवान की सेवा में लगे हैं, या अपना कल्याण कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, ये क्या दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन वे जो है पूरी दुनिया का कल्याण कर रहे हैं, पूरी दुनिया का कल्याण कर रहे हैं। अगर कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं तो समझो कि पूरी दुनिया को प्रसन्न कर रहे हैं, पूरी दुनिया को, है ना। जैसे कि प्रभुपाद ने तो दुनिया की तो कुछ भी सेवा नहीं की, उन्होंने तो कृष्ण का नाम ही जो है फैलाया, और दुनिया वालों की तो निंदा ही की कि तुम लोग जो है कृष्ण का नाम नहीं लेते हो, तुम लोग मूर्ख फूल्स रास्कल्स, प्रभुपाद ने यही कहा। तो दुनिया की कोई खुश प्रशंसा नहीं की प्रभुपाद ने, लेकिन पूरी दुनिया खुश, पूरी दुनिया खुश है ना। क्यों? क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं तो सब खुश होते हैं। इसमें क्या ऐसा है ना, यस्मिन प्रसन्न जगत तुष्टो, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टो भवती। तो ये जो है मतलब बड़ा वैज्ञानिक सत्य है कि कृष्ण को अगर आप प्रसन्न करते हैं तो पूरा जगत प्रसन्न होता है, है ना। यहाँ नित्यानंद प्रभु के लिए कहा गया। अब राघव पंडित घर में कर रहे हैं, हैं, तो घर के अंदर जो है तो दिखाई भी नहीं पड़ते होंगे, कौन देखता भी नहीं नित्यानंद प्रभु, लेकिन यहाँ कहा गया कि पूरे जगत को प्रेम में डुबो दिया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अगर प्रसन्न हो जाए तो समझो कि पूरे जगत को आपने जो है प्रसन्न कर लिया, पूरे जगत को प्रेम दे दिया। तो भक्त का जो प्रभाव है पूरे जगत में इसी प्रकार जाता है, जैसे कि पेड़ की जड़ में आपने पानी डाला है तो पानी पूरे पेड़ में जाता है, चाहे आपने एक गिलास पानी डाला। आप समझ, पेड़ की जड़ में आपने एक गिलास पानी डाल दिया, लेकिन ये एक गिलास पानी जो है पूरे पेड़ में चला गया कि नहीं, पूरे पेड़ में गया है। और समान रूप से गया है, पूरे पेड़ में समान रूप से गया है, है ना। तो इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु का जो प्रेम है वो पूरे जगत को जो है मतलब प्राप्त हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा जो है ये विज्ञान है, जो कि कोई जाने या ना जाने, लेकिन होता है, ये होता है, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है शेषे नृत्य करे प्रेम जगत भाषाए, शेषे का मतलब अंत में, शेषे नृत्य करे प्रेमे जगत भाषाए। नित्यानंद प्रभु ने जब नृत्य किया, शेषे माने अंत में, जब नृत्य किया पहले भक्तों को नृत्य कराया, इसके बाद स्वयं नृत्य करने लगे, तो जगत भाषाए। आगे श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु का नृत्य देख रहे थे। देखो नित्यानंद प्रभु ने जब भोजन के समय बुलाया तो चैतन्य महाप्रभु आ गए, उनके बुलाने से आए, लेकिन जब नृत्य करते हैं नित्यानंद प्रभु तो बिना बुलाए आते हैं श्री चैतन्य, है ना। नित्यानंद प्रभु का नित्य देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। आप कहीं पर भी खड़े हो जाए चैतन्य महाप्रभु है ना, तो अगर चैतन्य महाप्रभु यहाँ भी अगर मान लो आ जाए खड़े हो जाए तो, और अगर वो नहीं चाहेंगे तो आप लोग नहीं देखेंगे, वो सब कुछ देखेंगे और खड़े यहाँ पर भी खड़े हो सकते हैं, कहीं भी खड़े हो सकते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर आ गए और जो है नृत्य देख रहे हैं है ना, सब लोग नहीं देख रहे हैं, और हो सकता है कि सबके सामने ही खड़े हों तो भी सब लोग ना देखें है ना, और कोई जिसको वो दिखाना चाहें वो देख भी सकता है, है? तो चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे नित्यानंद प्रभु का नृत्य, और नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु है ना, किंतु अन्य लोग नहीं देख पाए, बाकी लोग नहीं देख पाए है ना। नित्यानंद प्रभु देख रहे थे कि वो कहाँ खड़े हैं, कहाँ पर खड़े हैं है ना, और खड़े हैं तो हाथ एक हाथ ऊपर उठाए हैं या दोनों हाथ ऊपर उठाए हैं या दोनों हाथ नीचे किए हैं है? नित्यानंद प्रभु पूरी चेष्टाएं भी देख रहे हैं उनकी, ऐसे नहीं कि भाई अदृश्य हैं तो उनका कोई आकार निराकार रूप में आ गए, ऐसा नहीं है, निराकार रूप में तो सब जगह वो हैं। माया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, तो निराकार रूप में तो सब जगह हैं वो है, लेकिन वो नहीं है कि भाई निराकार रूप में पहले से हैं तो ठीक है वो आ गए कह सकते हैं कि आ गए कह दिए आ गए, तो ये नहीं है, वो अपने स्वयं रूप में आए, वो स्वयं रूप उनका साक्षात भगवान चैतन्य जो है जगन्नाथपुरी से आ गए है ना। नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं लेकिन अन्य लोग नहीं देख पाए। महाप्रभु तार नृत्य करे न दर्शन सबे नित्यानंद देखे न देखे अन्य जन, ये आज की घटना है ना, हम लोग अभी बैठे हैं शाम के समय, तो शाम के समय ही हो रहा है, सवेरे की जो कथा थी वो सवेरे हमने सुनी थी और शाम की कथा हम अभी शाम को सुन रहे हैं है ना, राघव पंडित के घर में ये सब हो रहा है। श्री चैतन्य के नृत्य की तरह नित्यानंद के नृत्य की तुलना इन तीनों जगतों में किसी से नहीं हो सकती। भगवान चैतन्य का नृत्य है कोई नहीं कर सकता है ना, नित्यानंद प्रभु का नृत्य भी कोई तुलना नहीं, तीनों जगत में कोई तुलना नहीं है। नित्यानंद नृत्य दे नाहारे नर्तने उपमा दि बार नाई ए तीन भूवने, नित्यानंद प्रभु के नृत्य की माधुरी का वर्णन कौन कर सकता है। श्री चैतन्य स्वयं चलकर कैसे देखने आते हैं, यही महिमा है कि श्री चैतन्य स्वयं देखने आए, इससे बढ़कर के और क्या महिमा हो सकती है। नृत्य माधुरी के वर्णी बारे पारे महाप्रभु ऐसे जय नृत्य देखी बारे, कितने सुंदर शब्द की रचना है। नृत्य रे माधुरी केवा वर्णी बारे पारे, नृत्य रे माधुरी केवा, केवा माने कौन, वर्णी बारे पारे ये वर्णन करने में सफल हो सकता है, वर्णी बारे पारे। नृत्य रे माधुरी केवा वर्णी बारे पारे महाप्रभु ऐसे जयी नृत्य देखी बारे, महाप्रभु जिनका नृत्य देखने के लिए आए ऐसे नृत्य की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, महाप्रभु महाप्रभु थोड़ी कैसे ऐसे वैसों का नृत्य देखने आते हैं। नृत्य के बाद जब नित्यानंद प्रभु विश्राम कर चुके तो राघव पंडित ने उनसे निवेदन किया कि वे रात्रि का भोजन कर लें। नृत्यकारी प्रभु जाबे विश्राम कारीला भोजने रह लागे पंडित ने वेदन कैला, तो उन्होंने कहा भोजन करिए, और कब का भोजन है, सवेरे का भोजन है, नहीं खराब नहीं हो सकता है ना, नित्यानंद प्रभु अगर भोजन करेंगे तो खराब नहीं हो, सवेरे का बना हुआ खराब नहीं है ना। नित्यानंद प्रभु अपने निजी संगियों के साथ भोजन करने बैठ गए और श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए अपने दाहिनी ओर आसन बना दिया, नित्यानंद प्रभु ने अपने दाहिनी तरफ आसन बनाया है ना। तो सवेरे भी चर्चा की थी हमने कि नित्यानंद प्रभु ने दाहिनी तरफ जो है अपने चार बर्तन जो है रखे थे है ना, दाहिनी तरफ रखे थे, दाहिनी तरफ चैतन्य महाप्रभु बैठेंगे तो दो बर्तन उनके है ना चैतन्य महाप्रभु की बाईं तरफ होंगे वो बर्तन, और दो बर्तन नित्यानंद प्रभु के दाहिनी तरफ होंगे, तो बीच में रखे तो ऐसे खाएंगे। भोजन बरसीला प्रभु ने जयगान लिया, महाप्रभु आसन डाही ने पातिया। श्री चैतन्य वहां पर आए और अपने आसन पर बैठ गए, उन्होंने बुलाया तो बैठ गए चैतन्य महाप्रभु। इन कौन देख पाया, नित्यानंद प्रभु ने उनको बुलाया बैठ गए हैं, तो आसन वैसे दिखाई दे रहा है खाली खाली रखा हुआ है आसन, ये चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए हैं। नित्यानंद प्रभु ने उनको बैठाया और चैतन्य महाप्रभु बैठ गए खाने के लिए। महाप्रभु आशीष आसन बसिला, देखी राघव रे मन आनंद बाढ़िला। ये देखकर राघव पंडित को बहुत आनंद हुआ, राघव पंडित कि मेरे घर में चैतन्य महाप्रभु विराजमान हो गए। अब उन्होंने वैसे देखा हो या समझ लिया हो, ये भी सकता राघव पंडित ने ना देखा हो चैतन्य महाप्रभु को, लेकिन समझ गए कि नित्यानंद प्रभु ने आसन अगर बिछाया है तो बैठे हुए हैं, नहीं दिखाई दे तो भी बैठे हुए हैं। तो एक ये भी है कि अपनी बुद्धि से उन्होंने समझ लिया। जो भी हो, राघव पंडित को बहुत आनंद हुआ। राघव पंडित दोनों भाइयों के समक्ष प्रसाद ले आए और उसके बाद अन्य सभी वैष्णवों को प्रसाद वितरित किया। दो भाई आगे प्रसाद आनिया धारीला, सकल वैष्णव पीछे परिवेशन कैला। उसमें तरह तरह की मिठाइयाँ और खीर और उत्तम पकाए चावल थे जो अमृत के स्वाद को भी मात करने वाले थे। कई प्रकार की सब्जियां भी थीं, नाना प्रकार पीठा पाया से दिव्य साल्यान, अमृत निंदय ऐसे विविध व्यंजन। अमृत की निंदा करते हैं ऐसे व्यंजन है। राघव पंडित ने जो व्यंजन बनाए हैं वो अमृत की निंदा करने वाले हैं। ऐसा ये भी बताइए कि राघव पंडित की रसोई में राधा रानी स्वयं मतलब काम करती हैं, कोई नहीं देख पाता है, राघव पंडित की रसोई में राधा रानी स्वयं काम करती हैं। और राधा रानी के हाथ का बना हुआ है तो जितना भी खाओ नुकसान नहीं करेगा। फिर भक्तों को चिंता नहीं कि अब नुकसान कर जाए, अभी ज़्यादा नहीं, आधा पेट खाओ नहीं तो नुकसान करेगा। तो फिर आधा पेट का कोई चक्कर नहीं है, जितना छाओ दिखाओ। राघव पंडित द्वारा तैयार किया गया वो और अर्चा विग्रह को भेंट किया गया भोजन अमृत के सार के तुल्य था। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा प्रसाद खाने के लिए वहाँ बारंबार आते थे। राघव पंडित के घर में जब भी भोजन मतलब भोग लगता था तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भोग लगाने आते थे। वैसे तो अर्चा विग्रह में भोग लगता है तो वो अलग बात है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से आते थे, है ना। ये बताया गया है चार जगह चार स्थानों में भोजन करने चैतन्य महाप्रभु हमेशा आते थे। सची माता के घर में, सची माता का घर छोड़ दिया तो संन्यास के बाद फिर ये नियम है कि जिस घर को छोड़ा है तो वहाँ दोबारा नहीं आएगा सन्यासी, तो उस नियम के अनुसार चैतन्य महाप्रभु नहीं आ सकते सची माता के पास घर में, लेकिन सची माता जो बनाती थी उसको खाते थे, है ना। और सची माता को जो है जब मतलब सब बर्तन खाली मिलते थे तो उनको लगता था कि मेरा पुत्र निमाई तो घर में है नहीं, ये मेरा भ्रम है, मैंने शायद बनाया ही नहीं। सची माता को जो है फिर लगता था कि मैंने शायद बनाया ही नहीं है, मेरा भ्रम है कि मैंने बनाया। और सब बर्तन खाली होते थे तो ऐसे खाली होते कि बिल्कुल साफ, भगवान चाट चाट के साफ कर देते हैं। तो एक जो है चिन्ह भी नहीं मिलता था तो सची माता को लगता था कि मैंने बनाया ही नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो जगन्नाथपुरी से संदेशा भेजा माता को कि मैं आता हूँ, तुम जो है इसमें शंका मत करो, मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ, तुम जो बनाती हो मैं उसको आता हूँ और खाता हूँ, यहाँ से जगन्नाथपुरी से मैं तुम्हारे घर में आता हूँ और खा करके फिर चला जाता हूँ, शंका मत करो। तो चैतन्य महाप्रभु संदेश भेजना पड़ा जगन्नाथपुरी से किसी भक्त के हाथों, है ना। तो सची माता के घर में भगवान भोजन करने आते हैं, राघव पंडित के घर में भगवान भोजन करने आते हैं, और भी हैं चार स्थान है ना, सची माता हाँ, और नित्यानंद प्रभु के नृत्य में हमेशा नित्यानंद प्रभु के नृत्य में हमेशा आते हैं, और हाँ, और श्रीवास आंगन में, श्रीवास आंगन में तो चार स्थान हैं जहाँ की भगवान चैतन्य जो है हमेशा आते थे, जगन्नाथपुरी में रहते हुए भी हमेशा आते थे। तो यहाँ पर क्या चल रहा था, राघव ठाकुर प्रसाद अमृत रसारे महाप्रभु जायता जहा खाइते आई से बारे बारे। क्या लिखा है, राघव ठाकुर प्रसाद अमृत रसार, राघव के घर का जो प्रसाद है वो अमृत का सार है, महाप्रभु जिसको खाने के लिए जहा खाई थे, महाप्रभु जिसको खाने के लिए ऐसे बार 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 आते हैं, एक बार नहीं हर बार, जितने बार बनाते हैं उतने बार आते हैं, क्योंकि वो राधा रानी का हाथ लग जाता है उसमें, है ना, तो ये फिर भगवान कैसे छोड़ेंगे, है ना। फिर जब राघव पंडित भोजन पकाने के बाद उसे अर्चन विग्रह को अर्पित करते तब श्री चैतन्य के लिए अलग से भोग लगाते, तो राघव पंडित भी जानते थे, है ना, तो एक अलग थाली जो है श्री चैतन्य के लिए भी बनाते थे भोग, उनके घर में जो मंदिर है अर्चन विग्रह की थाली तो बनाते थे और चैतन्य की थाली अलग, वो पूरी खाली हो जाती थी बिल्कुल साफ, है ना। भाग्यकारी राघव जब भोगे लगाए महाप्रभु लागे भोगे पृथगे बाड़ाए। श्री चैतन्य प्रतिदिन राघव पंडित के घर भोजन करते हैं रोज, और कभी कभी राघव पंडित को अपना दर्शन देने देते हैं, कभी कभी राघव पंडित साक्षात देखते भी हैं, हर बार नहीं देखते, खाते हर बार भोजन की थाली जो है साफ कर देते पूरी चाट चाट के लेकिन दर्शन कभी कभी देते हैं, हर बार दर्शन ही देते हैं राघव पंडित। प्रतिदिन महाप्रभु करे न भोजन मध्य मध्य प्रभु तारे दे न दर्शन। बहुत सरल है बंगाली, प्रतिदिन महाप्रभु करे न भोजन, राघव पंडित घर में रोज महाप्रभु भोजन करते हैं, और मध्य मध्य प्रभु तारे देने दर्शन, और बीच बीच में हम उनको दर्शन भी देते हैं। राघव पंडित प्रसाद लाकर दोनों भाइयों को देते हैं और बड़ी सावधानी से उन्हें खिलाते हैं। अब इस बार भी दर्शन दे रहे हों या ना दे रहे हों, लेकिन दोनों को जो है, और थाली में जो है खत्म हो रहा है भक्त लोगों को कैसा लगता होगा, नित्यन बहुत तो खा रहे हैं, दिखाई भी दे रहा है, लेकिन श्री चैतन्य की का जो आसन है खाली पड़ा है और थाली में वो रखते जा, राघव पंडित रखते जा रहे हैं और वो समाप्त भी होता जा रहा है जी बड़ी सावधानी से उन्हें खिलाते और फिर सारा प्रसाद खा जाते जिसमें कुछ भी शेष नहीं बचता है, सब खाते हैं श्री चैतन्य खाते हैं और दिखाई नहीं पड़ रहा कुछ भी और समाप्त होता है, और राघव पंडित जो बड़ी सावधानी से फिर भर देते हैं, कटोरी में जो आइटम था वो खत्म हो गया फिर से भर दिया, तो बड़ी सावधानी से, मतलब कि ये ना हो कि मतलब जरा सा भी अंतर पड़े, कि भगवान को जो है लगे कि अभी तो आया नहीं ये चीज, मैंने ख़त्म कर दी और ये आई नहीं है, तो राघव पंडित बहुत सावधानी से दे रहे हैं प्रसाद, है ना, भगवान की सेवा में जो है इतनी सावधानी की आवश्यकता है, कि भगवान ने कोई चीज़ खाई है तो तुरंत भरना है, तो तुरंत तुरंत उसको जो है भर रहे हैं राघव पंडित। दोई भाई रे राघव आने पारी वैसे जत्न कारी खाओ या ना रहे अवशेषे। वे इतना इतना सारा प्रसाद ले आते कि लोग उन्हें ठीक से जान नहीं पाते थे। निस्संदेह सच था कि परम माता राधा रानी स्वयं आकर राघव पंडित के घर भोजन पकाती हैं। अब राधा रानी का पकाया है तो वो भी घटता नहीं है अक्षय पात्र हो गया ना वो, है तो यहाँ भगवान खा रहे हैं, है ना, तो जो है फिर तो कम हो जाएगा ना, तो राधा रानी का पकाया हुआ है राघव पंडित के घर में, तो हर चीज़ में जो है मतलब कोई कमी नहीं होती है, चाहे जितने लोग खाएं, है और भगवान खा रहे हैं तो जो है कोई कमी नहीं हो रही। कहते उपहार आने हे न नाही जानी राघवेर घरे रांधे राधा ठाकुरानी। क्या कत उपहार आने, कत उपहार आने का मतलब है कितने तरह के आइटम बनाए हैं राघव पंडित ने, कोई जान नहीं पाता है। कितने तरह के आइटम बनाए राघव पंडित ने, कोई जान नहीं पाता है। राघवेर घरे रांधे राधा ठाकुरानी, राघव के घर में रसोई करते हैं राधा ठाकुरानी, है ना। श्रीमती राधा रानी को दुर्वासा मुनि से वर मिला है। श्रीमती राधा रानी को दुर्वासा मुनि, राधा रानी का तो अपना गुण है, वो तो ईश्वरी हैं, परमेश्वरी हैं, लेकिन मनुष्य लीला में जो है एक ये कारण बन गया, दुर्वासा मुनि ने इनको वरदान दिया है राधा रानी को। दुर्वासा मुनि से वर मिला था कि वे जो कुछ भी पकाएंगी वो अमृत से भी अधिक मधुर होगा, उनकी पाक विद्या का ये विशेष गुण है। दुर्वासा रठाई ते हो पाय छिन्न वर, अमृत है ते पाक तार अधिक मधुर है। इसी प्रकार से है दुर्वासा मुनि के द्वारा राधा रानी को वरदान मिला कि जो कुछ भी वो बनाएंगी अमृत से ज्यादा मधुर होगा और कोई किसी को नुकसान भी नहीं करेगा। जैसे कृष्ण को वरदान दिया सांदीपनी मुनि ने कि जो मैंने विद्या सिखाई है वो तुम्हारे पास हमेशा रहेगी। विद्या तो उनकी ही है, उनकी ही विद्या है, लेकिन एक जो है मतलब निमित्त बन गया ना भगवान की लीला में, एक ही कारण बन गया, है ना। उसी प्रकार से राधा रानी का तो स्वाभाविक गुण है ये, लेकिन दुर्वासा मुनि से वर मिला और राधा रानी ने स्वीकार किया कि वरदान को दुर्वासा मुनि से मिला है, और कृष्ण ने अपने गुरु का भी जो है ये वरदान स्वीकार किया। ये नहीं किया कि मेरा अपमान करते हो, मैं तो सबका कारण हूँ, मेरा कौन गुरु हो सकता है, ऐसे नहीं कहा। कृष्ण ने उस वरदान को स्वीकार किया हाथ जोड़ के कि गुरु महाराज ने मुझे वरदान दिया। राधा रानी ने वरदान स्वीकार किया कि दुर्वासा मुनि का ये वरदान है ना। भगवान में जो है मतलब ऐसा विनम्रता का गुण है और वे जो है लीला करते हैं तो पूर्ण रूप से मनुष्य की लीला करते हैं। राधा रानी भी जो है लीला करती हैं इस तरह की, तो राधा रानी को वरदान मिला है। तो जब हम कहते हैं राधा रानी को वरदान मिला तो राधा रानी बुरा नहीं मानती हैं कि मुझे वरदान क्या मिला, कौन मुझे वरदान देगा, ऐसा नहीं। और ये भोजन सुगंधित है और देखने में भी सुंदर, सब गुण। कुछ चीज़ें ऐसी देखने में खराब लगती हैं, खाने में तो स्वादिष्ट है, देखने में खराब लगती है, हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जो सुगंधि में तो कुछ नहीं पता चलता है लेकिन खाने में स्वादिष्ट है, लेकिन राधा रानी का बनाया है तो सुगंधि भी उसमें निकलेगी बहुत, और देखने में बहुत सुंदर होगा और खाने में स्वादिष्ट होगा, है ना। तो इसमें तीनों इंद्रियां तृप्त होगी, हैं, आपकी नासिका से सुगंध भी आएगी, हैं, और देखने से भी जो है सुंदर रूप है उसका, रूप रंग, और खाने का तो अलग है, ही है। सुगंधि सुंदर प्रसाद माधुर्य रसार, दुई भाई ताहा खाया संतोष है अपार। दोनों भाई खा करके अपार संतोष प्राप्त कर रहे हैं, दोनों भाई नित्यानंद और चैतन्य दोनों खा रहे हैं, अपार संतोष प्राप्त कर रहे हैं। वहां पर उपस्थित सारे भक्तों ने रघुनाथ दास से प्रार्थना की कि वे बैठकर प्रसाद ग्रहण करें। सब भक्तों ने रघुनाथ दास, रघुनाथ दास अपने को बहुत क्या मानते हैं, तुच्छ मानते हैं, है ना। तो वो एक मतलब नित्यानंद प्रभु और उनके संगे जब भोजन करें तो अपना अधिकार नहीं मानते हैं कि मुझे खाना चाहिए, है ना। जैसे कुत्ता होता है ना, तो कुत्ते में विनम्रता होती है, वो अपना अधिकार नहीं मानता है कि जो है वो खाएगा आपके साथ। कुत्ते में एक बड़ा, बहुत बड़ा गुण है, आप खा रहे हैं तो आकर के दूर बैठ जाएगा, और वो कभी नहीं इच्छा करता है कि आप उसको खिलाएं, नहीं। जब आप खा जाते हैं, उठ के चले जाते हैं, तब फिर वो देखता है कुछ बचा तो नहीं है, ये गुण है ना कुत्ते का। तो ये कुत्ते का गुण जो है मतलब लेना चाहिए, ये विनम्रता जो है कुत्ते की जो है ये सीखना है, सीखने लायक है कुत्ते में ये गुण, बिल्ली में तो नहीं है। बिल्ली तो जो है कहीं से भी जो है अगर मिल जाए चोरी चपाटी करके अपना करे, कुत्ते में ये सब चीज़ें नहीं है, अगर देखता है तो वो जो है। तो रघुनाथ दास जो है नहीं खा रहे हैं, तो भक्तों ने जो है प्रार्थना की रघुनाथ दास से, कह रहे हैं प्रार्थना, कह रहे हैं कि बैठ के तुम भी आओ। लेकिन राघव पंडित ने उन्हें बताया कि वे बाद में प्रसाद ग्रहण करेंगे। राघव पंडित जो है उनकी भावना को जानते हैं कि वो बाद में प्रसाद ग्रहण करेंगे। भोजन वासी ते रघुनाथे कहे सर्वे जन, पंडित कहे है पाछे कारी बे भोजन। सारे भक्तों ने इतना प्रसाद खाया कि गले भर तक भोजन भर गया। यहाँ तक खाया प्रसाद है। तत्पश्चात हरि के पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए सभी उठ खड़े हुए और सबने अपने अपने हाथ मुंह धोए। भक्तगण आकंठ भारी या कारी ले भोजन, हरि ध्वनि कारी उठी कैला आचे मन। लेकिन ये नियम नहीं है, आप लोग प्रसाद ऐसे नहीं खाना। शुरू शुरू में तो कहा जाता है कि खाओ ज्यादा, प्रभुपाद भी खिलाते थे है ना, खूब खाओ। लेकिन बाद में फिर कहते थे कि अब कम करो, आप प्रसाद कम करो है ना। तो पहले जो है गले तक खिलाते थे और फिर जब उनकी जो जिह्वा बस में हो जाती थी, इंद्रिय बस में हो जाती थी, फिर कहते अब कम करो उसको है ना। लेकिन प्रसाद के अलावा कुछ और नहीं खाना। तो पहले वो इतना खिलाते थे कुछ खा ही नहीं पाएगा, वो इतना खिला दिया कि कुछ और खा ही नहीं सकता। इसके बाद फिर जो है कम करते थे, तो वो और कोई चीज़ नहीं खाएगा, लेकिन प्रसाद भी कम खाएगा और दूसरी चीज़ें नहीं खाएगा ना। भोजन के बाद दोनों भाइयों ने हाथ मुंह धोए, तब राघव पंडित फूल की मालाएं और चंदन लेप ले आए और उन्हें सुसज्जित किया। भोजन कर ये दो ये भाई कैला आचा मन, राघव आने पर आईला माल चंदन। अब देखो दोनों भाइयों को जो है आचमन कराया, मतलब हाथ धुलाया। तो हाथ कहाँ पर धुलाया, वहीं पर ही हाथ धुलाया है ना। तो एक बर्तन लाए राघव पंडित और हाथ धुलाया है ना। इसके अंदर चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं राघव पंडित, तभी तो हाथ धुला रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ धो रहे हैं है ना। तो राघव पंडित जो है हाथ धुला रहे हैं और उसके बाद फिर दोनों को फूलमाला पहनाई और चंदन का लेप किया। चंदन का लेप भी किया तो कैसे किया, दिखाई दे रहे ना चैतन्य महाप्रभु, दिखाई दे रहे हैं उसमें। तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य को जो है चंदन का लेप किया। राघव पंडित ने उन्हें पान का वीणा खिलाया और उनके चरण कमलों की वंदना की। उन्होंने भक्तों को भी पान फूल मालाएं और चंदन लेप दिया। बीड़ा खाओ याइला कैला चारण है बंदन, भक्त गाने दीला बीड़ा माल्य है चंदन। तो सवेरे भी हमने चर्चा की थी कि पान में अगर सुपारी नहीं है तो वो पान जो है लिया जा सकता है, उसमें अगर कत्था है, चूना है और भी कोई चीज़ें हैं तो वो लिया भी जा सकता है, लेकिन सुपारी विशेष रूप से उसमें नशा है। और तम्बाकू तो है ही है, गलत चीज़ें, सुपारी अगर नहीं है तो लिया जा सकता है। रघुनाथ दास के ऊपर विशेष कृपालु होने के कारण राघव पंडित ने उन्हें दोनों भाइयों द्वारा छोड़े गए और चिष्ट की थालियाँ दी। सवेरे नितिन प्रभु ने दिया था, सवेरे नितिन प्रभु ने अपना और श्री चैतन्य का उच्छिष्ट दिया था रघुनाथ दास को, और इस बार राघव पंडित ने दिया। इस बार राघव पंडित ने दिया दोनों थालियों का, चैतन्य महाप्रभु की थाली और नितिन प्रभु की थाली है। राघव किसको दिया, रघुनाथ दास को, लो इसमें खाओ। इस तरह से जो है राघवे कृपा रघुनाथे रे ऊपरे, दोई भाईर अवशिष्ट पात्र दिला तारे। वो पात्र जो है मतलब ऐसे ही होंगे ना, जैसे पत्ता है, पत्तल होगी कुछ इस तरह की है, तो उसमें खा सकते हैं, क्योंकि बाद में तो उसको फिर फेंकना है तो खा सकते हैं। तो उन्होंने जो है दे दिया, अगर थाली होती तो फिर वो नहीं दे सकते ना ऐसे, तो उसमें नहीं खा सकते अगर थाली है। लेकिन अगर पत्तल दिया है तो फिर पत्तल तो बाद में फिर डाला जाता है ना, तो उसी में ही जो रहता है खा सकते हैं। उन्होंने कहा श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये भोजन किया है, यदि तुम उनके शेष को ग्रहण करोगे तो तुम अपने परिवार के बंधन से छूट जाओगे। ये तो बहुत बड़ी उनकी समस्या थी कि वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। कहिरा चैतन गोसाई करे अच्छे न भोजन तार शेर से पहले तुम और खंडे ले बंधन। राघव पंडित ने कहा कि तुम्हारा बंधन खंडित हो जाएगा अगर तुम खाओगे, इसलिए राघव पंडित ने नहीं कहा कि तुम खाओ साथ में, है ना। राघव पंडित जानते थे कि इनकी जो तकलीफ है, इनकी बीमारी क्या है, रघुनाथ दास की बीमारी क्या है, कि वो घर के बंधन से नहीं छूट पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी कहा कि बाद में तुम खाना। और बाद में जब चैतन्य नित्यानंद ने खा लिए तो वो ही दे दिया, अब इसको खाओ तो वो बंधन से छूट जाओगे, अपने घर के बंधन से छूट जाओगे। नित्यानंद प्रभु ने कहा था कि घर के बंधन छूटने के लिए, चोरी के दोष से छूटने के लिए क्या करो, मेरे संगियों को दही चीड़ा का भोजन कराओ। और राघव पंडित ने क्या कहा, घर के बंधन छोड़ने के लिए श्री चैतन्य नित्यानंद की उच्छिष्ट का भोजन करो। इस तरह से राघव पंडित कह रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव या तो भक्त के हृदय में या उसके घर में निवास करते हैं, ये बात कभी छिपी रहती है कभी प्रकट होती है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। भक्त चित्ते भक्त गृह सदा अवस्थान है, कभू गुप्त कभू व्यक्त स्वतंत्र भगवान। इसमें क्या बताया गया है कि भक्त के चित्त में और भक्त के घर में सदा भगवान का अवस्थान होता है, लेकिन कभी वो दिखाई पड़े और कभी गुप्त रहें वो उनकी इच्छा है। भक्त के घर में और भक्त के चित्त में भगवान हमेशा रहते हैं, कभी दिखाई पड़ते हैं और कभी नहीं दिखाई पड़ते हैं वो अलग बात है, लेकिन हमेशा रहते हैं। सबके चित्त में नहीं है भगवान, हृदय में तो है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, कि नहीं, सबके हृदय में तो भगवान है, लेकिन वो परमात्मा रूप से हैं सबके हृदय में, लेकिन चित्त में है? सबके चित्त में भगवान नहीं होते हैं। भगवान स्वयं भगवान है, वो भक्ति ही चित्त में होते हैं, और घर में भी भगवान रहते हैं, भक्ति के घर में भी भगवान रहते हैं, है ना। तो वो उनका सर्वत्र सर्वव्यापी जो निराकार रूप है तो वो तो हर जगह है, है? तो वो नहीं है, भक्ति घर में भगवान रहते हैं। तो कैसे रहते हैं, कभी बैठे हैं या कभी खड़े हैं, ऐसे मतलब भगवान रहते हैं भक्ति घर में, और भक्त के चित्त में भी रहते हैं भगवान हैं। हाँ, चित्त में तो भगवान रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वव्यापी हैं, अतः वे सर्वत्र निवास करते हैं, जिसमें संदेह करता है उसका विनाश हो जाता है। सर्वत्र व्यापक प्रभु सदा सर्वत्र वास है, ये आते संशय जार से जाए नाश है। प्रातः काल गंगा स्नान करने के बाद नित्यानंद प्रभु अपने संगियों के साथ उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब अगले दिन की लीला है, अभी तक थी आज की, है ना, अब अगले दिन की लीला बताई गई है। अगले दिन की लीला जो कल आएगा, प्रातः काल गंगा स्नान करने के बाद नित्यानंद प्रभु अपने संगियों के साथ उसी वृक्ष नीचे बैठ गए। कौन सा वृक्ष, जहाँ पहले रघुनाथ दास को दिखाई देते और दूर से प्रणाम किया था, और वहाँ रघुनाथ दास के सिर में अपने चरण रखे थे और चोर कहा था, उसी स्थान में नित्यानंद प्रभु बैठे हैं, अपने संगियों के साथ बैठे हैं। प्रातः नित्यानंद प्रभु गंगा स्नान करिया से वृक्ष मोले वसीला निज गण लैया। रघुनाथ दास ने वहां जाकर नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की पूजा की, उन्होंने राघव पंडित के द्वारा अपनी इच्छा बताई। राघव पंडित से कहा कि बता दो नित्यानंद प्रभु को, स्वयं बात करने में बहुत उनको संकोच होता है, तो नित्यानंद राघव पंडित से कहते हैं कि बात करो, अपनी इच्छा बताई। रघुनाथ आसी कैला चारण बंधन, राघव पंडित द्वारा कैला निवेदन। क्या राघव पंडित से बताया, नित्यानंद प्रभु को बताओ, क्या बताओ, मैं मनुष्य में अधम हूँ, अत्यंत पापी हूँ, पतित हूँ, तिरस्कृत हूँ, तो भी श्री चैतन्य के चरण कमलों की शरण पाने की इच्छा कर रहा हूँ। ये नित्यानंद प्रभु के सामने धीरे से राघव पंडित से बोल रहे हैं कि बताओ, नित्यानंद प्रभु को बताओ, कि मैं क्या चाहता हूँ, घर के बंधन से छूट करके श्री चैतन्य के संग उनके चरणों की शरण पाना चाहता हूँ। अधम पामर मोई हीन जीवाधम मोर इच्छा है पांग चैतन्य चरण। अब चोरी चोर की चोरी जो है सफल नहीं हुई तो अब चोर आत्मसमर्पण कर रहा है कि जो चीज मैं चुराना चाहता था तो मैं चुरा तो नहीं पाया, अब आप से क्या मांग रहा हूँ, अब आपसे मैं मांग रहा हूँ क्योंकि तो आप ही की धन संपत्ति है तो आपसे ही मांगने में कुछ सफलता मिलेगी। बिना मांगे चोरी से जब नहीं काम चला तो अब मैं जो है आपसे मांग रहा हूँ। तो बोले अधम पामर मोई हीन जीवाधम मोर इच्छा है पांग चैतन्य चरण। क्योंकि मैं अधम पामर हूँ तो मैं इसकी कीमत तो नहीं दे सकता, अब मुझे धन संपत्ति जो चाहिए उसकी कीमत तो मेरे पास कुछ नहीं है। अधम पामर अधम मैं हूँ, जीव अधम अधम जीव हूँ। जैसे चांद पकड़ने का इच्छुक किसी बोने की तरह मैंने अनेक बार प्रयत्न किए परंतु सफल नहीं हुआ। चांद को पकड़े और वो भी छोटा कद का आदमी छोटा छोटे कद का और लंबे कद से क्या फर्क पड़ता है, चांद को कौन पकड़ सकता है, लेकिन फिर भी छोटे कद का आदमी तो और जो है उसके लिए हंसी की बात है चांद को पकड़ना चाहे। तो श्री चैतन्य की चरण शरण प्राप्त करना क्या है, चंद्रमा को पकड़ने जैसा है। और मैं कैसा हूँ, बहुत बौना क्या बोलते हैं नाटा नाटा, मैं बहुत नाटा हूँ और चंद्रमा को पकड़ना चाहता हूँ, सिर्फ चैतन्य के चरणों की शरण पाना चाहता हूँ और मैं हूँ बहुत अधम तो सफल नहीं हो पाया मैं। बामन है अजय न चांदारी बारे चाहे अनेक जत्न अनेक जत्न कई नोताते कबू सिद्ध न आए। जितनी बार मैं भाग जाने का प्रयास करता था और अपने घर के संबंध तोड़ना चाहता था उतनी बार मेरे माता पिता ने दुर्भाग्यवश मुझे बांध करके रखा। जितने बार मैंने कोशिश जत बार पालाई आमी गृह दि छाड़िया पिता माता दोहे मोरे राखे बांधिया। अभी कल की कथा मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि कल तो सुनेंगे नहीं आप लोग, तो नहीं सुनोगे ना, कोई नहीं सुनेगा। आपकी कृपा के बिना कोई भी श्री चैतन्य की शरण प्राप्त नहीं कर सकता है, किंतु यदि आप कृपालु हैं तो अधम से अधम व्यक्ति भी उनके चरणों के शरण पा सकता है। तो ये आपका आपकी धन संपत्ति है तो जिसको आप देना चाहो तो दे सकते हो, फ्री में भी दे सकते हो, क्या है आपके लिए, आप चाहो दे सकते हो। तो मार कृपा भी ना के है चैतन्य ना पाए तुम ही कृपा कई ले तारे अधम है पाए। यद्यपि मैं अयोग्य हूँ और याचना करते हुए भयभीत हूँ, मुझे मांगने में भी डर लग रहा है। ये डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं नितिन प्रभु से, किससे बोल रहे हैं, राघव पुण्य से बोल रहे हैं कि बताओ प्रभु को मुझे मांगने में भी डर लग रहा है। तो भी मेरी आपसे प्रार्थना है आप मुझे श्री चैतन्य के चरण कमलों में शरण प्रदान करके मेरे प्रति विशेष कृपा कीजिए। अयोग्य मुइने वेदान कारी ते कारी भय मोरे चैतन्य देह गोसाई है आ सदय। आप मेरे सिर पर अपने चरण रखकर मुझे यह आशीर्वाद दें कि मैं बिना कठिनाई के श्री चैतन्य की शरण प्राप्त कर सकूं। मैं आपसे इसी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब चोरी नहीं करूंगा, आगे से चोरी नहीं करूंगा। मोरे माथे पद धारी का रहा प्रसाद है निर्विघ्न चैतन्य पांकार आशीर्वाद है। बिना कोई विघ्न के चैतन्य की प्राप्ति हो, मुझे आशीर्वाद दीजिए। रघुनाथ दास की ये याचना सुनकर नित्यानंद प्रभु हंसे और सारे भक्तों से बोले रघुनाथ दास के भौतिक सुख का स्तर स्वर्ग के राजा इंद्र के सुख के समान है। निधन प्रभु जो है रघुनाथ दास की प्रशंसा कर रहे हैं कि देखो ये चाहता ये चाहे इसको जो चाहत हुई है जिस चीज की चाहता कौन है, उस चीज को चाहता कौन है, इस चीज की महिमा कौन समझता है? श्री चैतन्य के चरणों की महिमा कौन समझता है? हा? कोई अगर महिमा समझता है, निर्धन है, कुछ नहीं है, चलो भजन कर रहे हैं, लेकिन इंद्र के समान जिसके पास सुख ऐश्वर्य हो वो कहाँ भजन करेगा कृष्ण का, है ना? तो चैतन्य नित्यानंद बहु कह रहे हैं कि रघुनाथ दास का जो है सुख है वो कैसा है? इंद्र के समान सुख है। सुने हास्य कहे प्रभु सब भक्त गाने यारे बिषय सुख इंद्र सुख समी। श्री चैतन्य की कृपा होने से ही इसे अच्छा नहीं लग रहा। ये नितिन बहु कह रहे हैं कि चैतन्य की कृपा तो इसके ऊपर पहले से है, इसलिए इसको ये सुख अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए तुम सारे लोग इस पर कृपा करके आशीर्वाद दो कि शीघ्र ही चैतन्य के चरणों की शरण प्राप्त करे। नितिन बहु कह रहे हैं सब भक्तों से कि आप लोग आशीर्वाद दो, है ना? चैतन्य कृपा तैसे ही ना ही भाई माने सब आशीर्वाद कर पाओ चैतन्य चरणे। नितिन बहु कह रहे हैं कि सब लोग आशीर्वाद दो इसको। जो व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों की सुगंध का अनुभव करता है वो सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में प्राप्त सुख को भी कोई महत्व नहीं देता है, ब्रह्मलोक का भी सुख। फिर स्वर्ग सुख की तो बात ही क्या है, ब्रह्मलोक के सुख को भी नहीं चाहता वो। जिसको सुगंध ही मिल गई, सुगंध कहेगी कमल की, कृष्ण चैतन्य के चरण कमल की सुगंधी जिसको मिल जाए, है ना, तो वो फिर जो है ब्रह्मलोक का सुख भी नहीं पाना चाहता। कृष्ण पाद पद्म गंध है जयी जन पाए ब्रह्मलोक आदि सुख है तारे नाही भाए। कितने सुंदर, कृष्ण पाद पद्म गंध जयी जन पाए, कृष्ण पाद पद्म कृष्ण के चरण कमल की गंध जयी जन पाए। जो व्यक्ति पालेगा ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नाही भाए, ब्रह्मलोक से लेकर के जितने भी सुख हैं उसे अच्छे नहीं लगते हैं। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के इच्छुक लोगों द्वारा उनकी उत्तम स्तुतियां की जाती हैं, इसलिए भी उत्तम श्लोक कहलाते हैं। भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक होने के कारण राजा भरत ने युवावस्था में ही अपनी अत्यंत आकर्षक पत्नी, स्नेहल बच्चों, प्रिय मित्रों और ऐश्वर्युक्त साम्राज्य का उसी तरह परित्याग कर दिया जिस तरह मल को त्याग दिया जाता है, जैसे मल का त्याग करे है? कोई मल का त्याग करता है तो फिर पीछे थोड़ी देखता है कि कैसा था मेरा मल, कोई नहीं दिखता है, उसे बदबू आती है। उसी प्रकार से सुंदर पत्नी है और बच्चे हैं, मित्र हैं और साम्राज्य भरत महाराज ने त्यागा। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, पांचवें स्कंद में भरत महाराज ने छोड़ा था, युवावस्था में छोड़ा, 1 करोड़ साल तक राज्य किया था और उनके नाम से ही भारतवर्ष पड़ा, ये भारतवर्ष उनके नाम से पड़ा है। और उन्होंने जो है युवावस्था 1 करोड़ साल तक राज्य करने के बाद भी शरीर उनका पूरा युवावस्था थी उनके शरीर में, और उन्होंने छोड़ दिया और मल के तरह छोड़ दिया, है ना। यो दुष्ट जान दार सुतान सुरेंद्रना जम हृदय प्रसाम जहो जब वे मलबंद उत्तम श्लोक लाल सहाम। तब नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को अपने पास बुलाया, उनके सिर पर अपने चरण रखे और उनसे बोले। तबे रघुनाथ प्रभु निकट निकट बोला इला तारे माथे पद धारी का तेला गीला। हे रघुनाथ, चूंकि तुमने गंगा नदी के तट पर इस भोजन की व्यवस्था की है, क्या किया है भोजन, मुझे कीमत चुकाई है, है? चोरी का प्रायश्चित किया है और मुझे कीमत दी है, गंगा नदी के तट पर इस भोजन की व्यवस्था की है, और स्थान भी क्या था, गंगा जी का तट था, इसलिए श्री चैतन्य तुम पर मात्र अपनी कृपा दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आए थे श्री चैतन्य, उन्होंने खाया भी सबके भोजन। चैतन्य महाप्रभु उठा उठा करके नित्यानंद प्रभु को खिलाते थे और नित्यानंद प्रभु उनको खिलाते थे, है ना। तो श्री चैतन्य ने कृपा करी है, क्यों? क्योंकि तुमने भक्तों को भोजन कराया। नित्यानंद प्रभु अपना गुण नहीं बता रहे हैं कि मुझे, है ना, नित्यानंद प्रभु की भी ऐसी आदत है, अपना गुण नहीं बताते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, तुमने भक्तों को भोजन कराया, गंगा जी के तट पर, इसलिए चैतन्य तुम पर कृपा दिखाने के लिए यहाँ पर आए थे, जबकि नित्यानंद प्रभु ने बुलाया था तभी आए थे ना। ठीक है, नित्यानंद प्रभु क्या करें, तुम्हारे ऊपर कृपा श्री चैतन्य ने क्यों की है, क्योंकि भक्तों को तुमने भोजन कराया यहाँ पर। तुम्हें जय कर पोले न भोजन तुम आई कृपा कर गौर कैला आगमन। अपने अहेतु की कृपा से उन्होंने चिवड़ा और दूध खाया, तत्पश्चात रात में भक्तों का नृत्य देखने के बाद उन्होंने भोजन भी किया, नृत्य भी देखा था उन्होंने। अब वो कह रहे भक्तों का नृत्य देखना है, देखा, जबकि देखा किसका नृत्य, नित्यानंद प्रभु का नृत्य देखा। नित्यानंद प्रभु भक्तों अपना सब गुण जो है भक्तों के ऊपर डाल रहे हैं, ये भक्तों का नृत्य देखा और उसके बाद भोजन भी किया चैतन्य महाप्रभु ने। कृपा करे कैला चीड़ा दुग्ध भोजन, नृत्य देखी रात्र कैला प्रसाद भक्षण। अब श्री चैतन्य गौरहरी तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं यहाँ आए, अब समझ लो कि तुम्हारे बंधन के सारे अवरोध दूर हो चुके हैं, अब कोई बाधा नहीं आएगी। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं अब कोई बाधा नहीं आएगी, जबकि अभी तो प्रत्यक्ष है, अभी तो कहीं भाग नहीं सकते, लेकिन नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि अब कोई बाधा नहीं आएगी। तो मधारी ते गोइला गौर आइला आइला आपने छूटे ले तुम्हारे जत विघ्नादि बंधने। श्री चैतन्य तुम्हें स्वीकार कर लेंगे और अपने सचिव स्वरूप दामोदर के अधीन तुम्हें रख देंगे, भविष्यवाणी। जगन्नाथपुरी में उनके स्वरूप दामोदर सचिव हैं, उनके अधीन करेंगे तुमको। इस तरह तुम उनके सर्वश्रेष्ठ विश्वस्त अंतरंग सेवकों में से एक बन जाओगे और श्री चैतन्य के चरण कमलों की शरण प्राप्त करोगे। हरि बोल। सरूपे स्थाने तो माँ कारी बे समर्पणे अंतरंग भृत्य बलि राखी बेचरणे। इस तरह आश्वस्त होकर तुम अपने घर लौट जाओ, तुम शीघ्र ही बिना किसी अवरोध के श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण शरण प्राप्त करोगे। अब तुम जाओ घर, अभी तुम अपने घर जाओ, अभी नहीं कहा कि अभी तुम भागो। अभी तुम घर जाओ, तुम्हें जो है जल्दी ही प्राप्त हो जाएगी, मतलब मौका ऐसा मिल जाएगा, तुमको मौका मिल जाएगा। निश्चिंत है या जाहे आपन भवन अचिरे निर्विघ्ने पावे चैतन्य चरण। क्या निश्चिंत है या जाहे आपन भवन, निश्चिंत होकर के जाओ अपने भवन में, अचिरे अचिरे माने शीघ्र ही, निर्विघ्ने यानी बिना किसी विघ्न के पावे चैतन्य चरण। श्री नित्यानंद प्रभु ने समस्त भक्तों से रघुनाथ दास को आशीर्वाद दिलवाया, आशीर्वाद दिलवाया, सब आशीर्वाद दो, या रघुनाथ दास को आदेश दिया कि सबको प्रणाम करो, ये भी होगा, आशीर्वाद दिलवाया, सब भक्तों ने आशीर्वाद दिया और रघुनाथ दास ने उन सबके चरण कमलों की सादर वंदना की। इसी आशीर्वाद के लिए रघुनाथ दास ने सब के जो है चरणों में प्रणाम किया। सर्व भक्त द्वारे तारे आशीर्वाद कराईला तसबर चरण तसबर चरण रघुनाथ बंदीला। नित्यानंद प्रभु से तथा उसके बाद अन्य सारे वैष्णवों से आज्ञा लेकर रघुनाथ दास ने राघव पंडित से गुप्त मंत्रणा की, राघव पंडित से गुप्त मंत्रणा की, मंत्रणा मतलब विचार विचार विमर्श है ना, राघव पंडित से गुप्त मंत्रणा की। प्रभु आज्ञा लैया वैष्णवेर आज्ञा लैला राघव साहित्य निभृते जुक्ति करीला। राघव पंडित से परामर्श लेकर उन्होंने चुपके से नित्यानंद प्रभु के खजांची के हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राएं और लगभग 7 तोला सोना दे दिया। कितना दिया, 100 स्वर्ण मुद्राएं और 7 तोला सोना नित्यानंद प्रभु के खजांची के हाथ में दिया, चुपके से दिया, मतलब नित्यानंद प्रभु कहीं मना कर दें तो भय था ना, तो इसे खजांची को कहा कि अभी नित्यानंद प्रभु को कुछ नहीं बताना, नित्यानंद प्रभु को जो मैं दे रहा हूँ अभी बताना नहीं, बहुत बुद्धिमान थे ना, इसलिए पता नहीं वो ना स्वीकार करें, इसी खजांची को चुपके से दिया। जुक्तिकारी सत्य मुद्रा 16 तोला साते निभृते दीला प्रभुर भंडारी रहाते। और राघव पंडित से बात विचार विमर्श कर लिया था कि कैसे दें, तो राघव पंडित ने कहा कि खजांची को दो, हो सकता है नित्यानंद प्रभु ना लें तो बाधा पड़ जाएगी है ना, तो खजांची को चुपके से दो, लेकिन बाद में बताना भी है, ऐसा नहीं है फिर कि बाद में सूचना ना मिले, बाद में सूचना भी मिलना चाहिए, है ना। तो वो भी फिर बताते हैं। रघुनाथ दास ने खजांची को मना कर दिया, इस विषय में अभी नित्यानंद प्रभु से मत कहना, किंतु जब वे अपने घर चले जाएं, मतलब मैं चला जाऊं, जब मैं अपने घर पहुंच जाऊं, तब इस भेंट के बारे में उन्हें बता भी देना, ये भी जरूरी। क्या बताना भी जरूरी है कि भेंट दिया है, लेकिन जब मैं चला जाऊं, मतलब फिर वापस करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा उनको, तब बता देना कि रघुनाथ दास ने इतना दिया है नितिन प्रभु को, तो सूचना देना जरूरी है ना। ये भी है, उन्होंने कहा खजांची से कि जब मैं अपने घर पहुंच जाऊं तब बता देना। तारे ने सेधीला प्रभु रे ए बेना कही वा ने जे घरे जाबिन जब तबे ने वेदी बाम। तब राघव पंडित रघुनाथ दास को अपने घर ले गए, उन्हें अर्चा विग्रह का दर्शन कराने के बाद उन्होंने रघुनाथ दास को एक माला और कुछ चंदन लेप दिया, प्रसादी माला और चंदन का लेप, प्रसादी लेप दिया। तबे राघव पंडित तारे घरे लैया गेला ठाकुर दर्शन कराया माला चंदन दिला। उन्होंने रघुनाथ दास को रास्ते में खाने के लिए बहुत सारा प्रसाद दिया। तब रघुनाथ दास ने पुनः राघव पंडित से कहा अनेक प्रसाद दीला पथे खाई बारे तबे पुनः रघुनाथ कहे पंडित रे। अब कितना दूर पड़ता है ये मुझे तो पता नहीं है, पानीहाटी से सप्तग्राम, रघुनाथ दास सप्तग्राम में रहते थे, तो अगर आप लोग में कोई जानते हैं तो बता सकते हैं। किसी को पता है नहीं, कोई बंगाली है यहाँ पर नहीं है, कोई है आप हैं पता है नहीं, पानी हाटी कितना पास है, पास ही होगा वैसे तो, ज़्यादा दूर नहीं होगा, फिर भी हो सकता है दिल्ली से जितना वृंदावन हो उतना हो या कितना हो, है ना। तब रघुनाथ दास ने पुनः राघव पंडित से कहा मैं नित्यन प्रभु के समस्त भक्तों को सेवकों को और आश्रितों की पूजा के रूप में उनको कुछ धन देना चाहता हूँ, सब भक्तों को आश्रितों को देना चाहता हूँ। प्रभु संग जत महांत भृत आश्रित जन पूजते चाहिए आमी सबारे चरण। आप जिसे जितना योग्य समझें उनमें से हर एक को 20 15 12 10 या 5 मुद्राएं दे दीजिए। राघव पंडित से कहा 43 किलोमीटर, हाँ बहुत अच्छा, 43 किलोमीटर है। और पैदल आए रघुनाथ दास पैदल आए, और प्रातःकाल आ गए सवेरे, कितनी जल्दी चले होंगे, प्रातःकाल पहुंच गए थे पानीहाटी, पैदल चले हैं, 14 घंटे पैदल, 14 घंटे। लेकिन उस समय शक्ति भी होती थी ना शरीर में, नहीं नहीं 43 किलोमीटर है ना पैदल, अगर पैदल चले
5 किलोमीटर
एक घंटे 5 किलोमीटर, हाँ तो कितना हुआ
8-9 घंटे
हैं, 8-9 घंटे। नहीं पहले जो है शक्ति भी होती थी ना शरीर में ज़्यादा, तो जो है और कम लगता होगा समय। तो रघुनाथ दास क्या कह रहे हैं कि आप जिसको जितना योग समझे हैं आप निश्चित करिए कि कितना किसको देना है। तो किसी को 15 दो, किसी को 20 दो, किसी को 10 दो, 12 दो, 5 दो, जिसको देना है आप सूची बनाओ, लिखो उनके नाम के आगे कि किसको कितनी मुद्रा देनी है, और फिर टोटल मुझसे ले लो। राघव पंडित जो है सबको फिर देंगे। रघुनाथ दास ने कहा कि टोटल कर दो और मुझसे ले लो उतनी स्वर्ण मुद्रा, किसको कितना देना है, लिस्ट नाम लिख करके और सबके आगे बताओ कि कितना कितना किसको देना है, वो आप ही निर्णय करो, है ना। 100 स्वर्ण मुद्रा नित्यानंद प्रभु को दिया तो इतना तो और किसी को नहीं मिलेगा ना, लेकिन उसी हिसाब से किसको जो है कितना मिलना चाहिए वो आप सूची बना करके दीजिए। विष पंच दस बार दस पंच है मुद्रा दे बेचारी जार जत योग्य है। रघुनाथ दास ने दी जाने वाली राशि का विवरण प्रस्तुत किया और उसे राघव पंडित को दे दिया, जिसने एक सूची बनाई प्रत्येक भक्त को कितनी कितनी राशि दी जानी है। सावल लेखा करिया राघव पास दिला जार नामे जत राघव चेठी लिखाईला। रघुनाथ दास ने अत्यंत विनय पूर्वक राघव पंडित के सामने अन्य सारे भक्तों को देने के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं और लगभग 2 तोला सोना रख दिया। एक सत्य मुद्रा आर सोना तोला द्वय पंडित तेरे आगे दिल करिया बिनय। राघव पंडित के चरणों की धूल लेने के बाद रघुनाथ दास अपने घर लौट आए और नित्यानंद प्रभु के प्रति अति कृतज्ञता प्रकट की कि उन्होंने अपना कृपापूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया है। तार पद धूलि लैया स्वगृह आईला नित्यानंद कृपा पाया कृतार्थ मानीला। तो कल होगी ये लीला, अपने घर आए रघुनाथ दास, मतलब अपने घर जाएंगे, कल जाएंगे। उसी दिन से वे घर के भीतरी भाग में नहीं गए, उल्टे वे दुर्गा मंडप में सोने लगे। जब आए तो घर के अंदर गए ही नहीं, बाहर दुर्गा मंडप में सोते हैं। से है ते अभ्यंतरे न करेन गमन बाहिरे दुर्गा मंडपे जाया करेन शयन। किंतु रखवाले उनकी पूरी चौकसी रखते थे। रघुनाथ दास अनेक उपाय सोचते जिससे कि उनकी निगरानी से भाग निकले। तो अब वो ऐसे नहीं चाहते थे कि अब पकड़े जाएं, है ना, तो ये सोचते हैं कि कैसे भागूं। तहाँ जा गिरा ऐसा बे रक्षा के गण, तहाँ जा गिरा ऐसा बे रक्षा के गण पलाई ते करे नाना उपाय चिंतन। उसी समय बंगाल के सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो वो समय आ गया जब बंगाल से सब भक्त चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, है ना। तो रथ यात्रा का जो समय है, रथ यात्रा का समय है 15 दिन बाद आएगी। हाँ, तो अभी से मतलब जाना शुरू कर दिया भक्तों ने स्नान यात्रा में। तो जाना शुरू कर दिया भक्तों ने, और फिर वो लोग 4 महीने तक और भी रहेंगे चैतन्य महाप्रभु के साथ में। तो यहाँ से जा रहे हैं सब भक्त। हेने काले गौड़े देशेर सब भक्त गण प्रभु रे देखे थे नीला चले कारीला गमन। रघुनाथ दास उनके साथ नहीं जा सकते थे क्योंकि वे इतने प्रसिद्ध थे, यदि उनके साथ जाएं तो पकड़ लिए जाएंगे। उनके उनके ग्रुप में 200 लोगों को लेकर के सेवानंद सेन जो है हर साल जाते थे, और सेवानंद सेन जो है इतनी सेवा की भावना थी कि 200 आदमियों का भोजन भी पूरे रास्ते भर, अब कितने दिन लगेंगे रास्ते में, पूरे रास्ते का भोजन और ठहरने का भी सब प्रबंध करते थे अपने पैसे से सेवानंद सेन। तो रघुनाथ दास उनके साथ नहीं जा सकते थे क्योंकि तो पकड़े जाएंगे। ऐसा बार है संगे रघुनाथ जाई ते ना पारे प्रसिद्ध है प्रकट संगता भी तब ही धारा पड़े। इस प्रकार रघुनाथ दास ने गंभीरतापूर्वक विचार किया कि किस तरह भाग निकलूं। एक रात जब वे दुर्गा मंडप में सो रहे थे तब पुरोहित यदुनंदन आचार्य घर के भीतर गए, तब केवल 4 दंड रात्रि शेष थी। हे मत चिंतित दैव एक दिन बाहिरे देवी मंडपे करे आछे न शयने। दंडचारे रात्रि जाबे आछे अवशेष है यदुनंदन आचार्य तबे करीला प्रवेश है। तो रात्रि में जो है 2 दंड शेष रह गए थे, नहीं 4 दंड, अच्छा 4 दंड रात्रि का शेष रह गया था निशा का अंत होने में। 4 दंड शेष रह गया था, निशा का अंत 3:22 पर होता है और 4 दंड 24:48 का दूना कितना हुआ 96 मिनट, 1.5 घंटा समझो, है ना। तो 3:22 में भी 1.5 घंटा और घटा दें, ठीक है ना। तो वो समय था जब यदुनंदन आचार्य उनके घर में अंदर गए। यदुनंदन आचार्य रघुनाथ दास के पुरोहित थे और गुरु थे। यद्यपि वे ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न थे किंतु उन्होंने वासुदेव दत्त की कृपा स्वीकार की थी। वासुदेव दत्त हाय अनुग्रहित रघुनाथ गुरु ते हाय पुरोहित। यदुनंदन आचार्य प्रामाणिक रूप से अद्वैत आचार्य से दीक्षा ली थी, उन्होंने इस तरह से चैतन्य महाप्रभु को अपना जीवन और प्राण मानते थे। अद्वैत आचार्य ते शिष्य अंतरंग आचार्य आज्ञाते माने चैतन्य प्राण धन। जब यदुनंदन आचार्य रघुनाथ दास के घर में आकर जाकर आंगन में खड़े हुए तो रघुनाथ दास वहां गए, उन्होंने उनके चरणों में गिरकर नमस्कार किया। अब देखो इनको भागने का कैसा मौका श्री चैतन्य की कृपा से ही मिला है, तो समय जो है उन्होंने प्रणाम किया। अंगन आसी आते हो जपे दंडा ईला रघुनाथ आसिता वेदंड कैला। यदुनंदन आचार्य का एक शिष्य अर्चा विग्रह की पूजा करता आ रहा था किंतु उसने वो सेवा छोड़ दी थी। यदुनंदन आचार्य चाहते थे कि रघुनाथ दास उससे वही सेवा पुनः करने के लिए उसको बोलें। तारे एक शिष्य तार ठाकुरे रे सेवा करे सेवा छाड़े अच्छे सारे तारे साधी बार तारे। उनके घर में जो अर्चा विग्रह था उसकी सेवा करता था उनका शिष्य, और वो जो है छोड़ दिया था, तो चाहते थे कि रघुनाथ दास उसको बोले कि तुम उनकी सेवा उनके घर में सेवा करो। यदुनंदन आचार्य ने रघुनाथ दास से अनुरोध किया कि तुम उस ब्राह्मण को फिर से सेवा करने के लिए बुलाओ, क्योंकि सेवा करने के लिए अन्य कोई ब्राह्मण नहीं है, मेरे घर में जो अर्चा विग्रह की सेवा करने के लिए कोई ब्राह्मण नहीं है, तो उसी को बुलाओ। रघुनाथ दास का रघुनाथ का ये तारे कारा है साधन सेवा जे न करे आर ना है के ब्राह्मण। ये कहकर यदुनंदन आचार्य ने रघुनाथ दास को अपने साथ ले लिया और दोनों बाहर चले गए। उस समय तक सारे पहरेदार गहरी नींद में सोए थे क्योंकि रात्रि का अंतिम प्रहर था, रात्रि का अंतिम प्रहर था। हेत कहे रघुनाथे लइया चलीला रक्षक सब शेष रात्रि निद्रा है पाड़ीला। रघुनाथ दास के घर से पूर्व की ओर यदुनंदन आचार्य का घर था, है ना, पूर्व की ओर था, और पूर्व की दिशा में जगन्नाथपुरी भी है ना। वे दोनों घर की ओर जाते हुए एक दूसरे से बातें करते गए। आचार्य रे घर यार पूर्व दिशाते कई देश होने ते दो चले से ही पते। आधी दूर जाकर रघुनाथ दास ने अपने गुरु के चरणों में निवेदन किया, मैं उस ब्राह्मण के घर जाऊंगा, उसे लौट आने के लिए प्रेरित करूंगा और उसे आपके घर भेज दूंगा। अर्ध पथ है रघुनाथ कहे गुरु रे चारणे आमी से प्रसादी पठाई मु तो मस्थाने। आप निश्चिंत होकर घर जा सकते हैं, आपके आज्ञानुसार मैं उस ब्राह्मण को मना लाऊंगा। इस निवेदन के साथ उसके उनकी अनुमति लेकर रघुनाथ दास ने चले जाने का निश्चय किया। क्या मैं भाग जाऊँ? नहीं कहा आप घर जाइए, मैं उसको भेज दूंगा। तुम्हें सो के घर जा है मोरे आज्ञा है ए छले आज्ञा मांगे कारी ला निश्चय। रघुनाथ दास ने सोचा भागने का ये सबसे अच्छा अवसर है क्योंकि इस समय मेरे साथ ना कोई नौकर है ना कोई पहरेदार है, सेवक है रक्षक आर के है ना ही संगे पलाई ते हमारे भाल ए प्रसंगे। इस तरह सोचते हुए वे पूर्व दिशा में तेजी से बढ़ते गए। कभी कभी भी घूम कर पीछे देख लेते किंतु कोई उनका पीछा नहीं कर रहा है। हेत चिंतित पूर्व मुखे कारी लगा मन ओ लटी या चाहे पाछे ना ही को न जन। श्री चैतन्य और नित्यानंद के चरण कमलों का ध्यान करते उन्होंने जो है आम रास्ता छोड़ दिया। आम रास्ता मतलब जो बहुत लोग चलते हैं, और गौण रास्ते से होकर जो उपयोग में नहीं लाया जाता जिसमें कोई नहीं जाता था शीघ्रता से आगे बढ़ने लगे। श्री चैतन्य नित्यानंद चारण चिंतिया पत छाड़े ओ पत जाए न धाइया। वे एक गांव से दूसरे गांव के आम रास्ते को छोड़ते हुए अपने प्राणों और मन से श्री चैतन्य के चरण कमलों का ध्यान करते हुए जंगलों से होते हुए आगे चलते गए। केवल दिशा पता है पूर्व दिशा में जाना, एक पूर्व दिशा का ध्यान। ग्राम ग्राम एर पात छाड़े जाए बाने बाने काए मानो वाक्य चिंते चैतन्य चरणे। एक दिन में लगभग 30 मील चलते थे, 30 मील का मतलब 45 किलोमीटर, एक दिन में 45 किलोमीटर चलते थे, और शाम को उन्होंने एक ग्वाले की गौशाला में विश्राम किया। पंचदश क्रोश पथ चली गेला एक दिन संध्या काले रहिला एक गोपे रे बाथाने। गौशाला में विश्राम किया, कोई नहीं जान पाएगा। जब उस ग्वाले ने देखा रघुनाथ दास भूखा है तो उसने कुछ दूध दिया, रघुनाथ दास ने वो दूध पिया, रात भर विश्राम करने के लिए वहीं लेट गए। कहाँ पर? गौशाला में। उपवासी देखी गोप दुग्ध आने दीला से दुग्ध पाने कारी पाड़ी अरहिला। रघुनाथ दास के घर में जब नौकर और पहरेदार ने उन्हें नहीं देखा तो तुरंत ही उनके गुरु यदुनंदन आचार्य के पास उनके विषय में पूछने के लिए गए। यथा तार सेवक रक्षक तारे ना देखिया तारे गुरु पासे वार्ता पूछी लेने गया। ये दोनों आचार्य ने कहा वो मुझसे आज्ञा मांगकर घर लौट गया। ये दोनों आचार्य ने कहा कि वो तो मुझसे आज्ञा मांगकर घर लौट गया। इस तरह वहां कोलाहल उठने लगा क्योंकि हर व्यक्ति चिल्ला रहा था कि रघुनाथ दास भाग गया, रघुनाथ भाग गया, रघुनाथ भाग गया, सब चिल्ला रहे हैं। तेहे कहे आज्ञा मांगे गेला ने जय घर पलाए ले रघुनाथ उठिल कोलाहल। रघुनाथ दास के पिता ने कहा अब बंगाल के सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए हैं। कौन थे? गोवर्धन, गोवर्धन दास। बोले कि तार पिता का एक गौड़ेर साबे भक्त गण प्रभु स्थान नीला चय लेकर लगा मन। रघुनाथ दास उन्हीं के साथ भाग गया होगा, सब भक्तों के साथ। दस व्यक्ति तुरंत उसे पकड़ने के लिए जाएं और लौटा लाएं। जाओ भाई दस आदमी जाओ, कहाँ पर? 200 आदमियों का जो है जो दल जा रहा है उसी में ही होगा। 10 आदमी जाओ पकड़ के लाओ उसको। सही संगे रघुनाथ गेले पालाइया 10 जन जाए तारे आना हधारिया। रघुनाथ दास के पिता ने शिवानंद सेन के नाम एक चिट्ठी लिखी, उनसे अत्यंत विनयपूर्वक अनुरोध किया कृपया मेरे पुत्र को लौटा कर भेज दीजिए। शिवानंद पत्री दीला बेनायकारिया आमार पुत्र रह तुम दी बाहू डिया। उस समय मोबाइल नहीं था ना, तो मोबाइल से करते शिवानंद सेन को। झांकरा में दसों व्यक्ति वैष्णव के एक टोली के साथ हो गए जो नीलाचल जा रही थी। झांकरा पर्यंत गेल सही दर्श जाने झांकारे ते पायल गिया वैष्णवेरे गाने। उन लोगों ने वो चिट्ठी देकर शिवानंद सेन से रघुनाथ दास के विषय में पूछा किंतु शिवानंद सेन ने उत्तर दिया कि वो यहाँ नहीं आया है। पत्र दिया शिवानंद वार्ता पूछीला शिवानंद कहते ए था न आईला। दसों लोग घर लौट आए। रघुनाथ दास के माता पिता अत्यधिक चिंतित हो उठे। मैंने बंद कर दिया मोबाइल, आपके पास मोबाइल हो बंद कर दिए। 6 बजे तक करना ना कथा, तो 6 बजे तक जितना हो जाएगा उतना करेंगे। हाँ क्या सुना? दस लोग वापस आ गए और माता पिता बहुत चिंतित हो गए कि उनके साथ नहीं है। रघुनाथ दास जो ग्वाले के घर में विश्राम कर रहे थे प्रातःकाल जल्दी जगे और पूर्व दिशा में जाने के स्थान पर उन्होंने अपना मुंह दक्षिण की ओर मोड़ा और आगे बढ़ने लगे। यथा रघुनाथ दास प्रभाते ओठिया पूर्व मुख्य छाड़े चढ़े दक्षिण मुख्य हैया। छत्रभोग पार करने के बाद भी आम रास्ते से न जाकर ऐसे रास्ते से गए जो एक गाँव से दूसरे गाँव होकर जाता था। भोजन की परवाह ना करके सारा दिन चलते रहे। भूख बाधक नहीं थी, भूख की बाधा नहीं हो रही थी क्योंकि उनका मन श्री चैतन्य के चरण कमलों की शरण पाने पर केंद्र था, है ना। भक्षण अपेक्षा नाही समस्त दिवस गमन छुदा नाही बाधे चदन चरण प्राप्ते मन। कभी भी चबे ना चबाते, कभी भी भोजन पकाते और कभी दूध पी लेते हैं। कुछ चबाने के लिए मिल गया तो वही चलते चलते चबा लिया, कभी भोजन पका लेते थे कभी दूध पी लेते। इस तरह जहाँ जाते उन्हें जो कुछ मिल जाता उसी से प्राणों की रक्षा करते। कभू चरवण कभू रंधन कभू दुग्ध पान जब जय मिले ताहे राखे ने जय प्राण। 12 दिनों में जगन्नाथपुरी पहुँचे। 12 दिन में जगन्नाथपुरी, कहाँ से? सप्तग्राम से। कितना किलोमीटर है देखो? 12 दिन में जगन्नाथपुरी पहुँचे सत्यग्राम से पैदल चले। तीन दिन ही भोजन किया रास्ते में, केवल 3 दिन भोजन किया उन्होंने। 12 दिन चलते रहे लेकिन रास्ते में 3 दिन ही भोजन किया उन्होंने। 12 दिन है चली गेला श्री पुरुषोत्तम पते 3 दिन मात्र करीला भोजन। जब रघुनाथ दास श्री चैतन्य से मिले तब महाप्रभु सरो दामोदर इत्यादि अपने संगियों के साथ बैठे हुए थे। स्वरूपादि सा गोसाई आछे न बसिया हे निकाले रघुनाथ में ले ले आसिया। आंगन में कुछ दूर रुक कर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तब मुकुंद दत्त ने कहा ये रघुनाथ आ गया। श्री चैतन्य से है? किसने बोला? मुकुंद दास ने बोला कि रघुनाथ आ गया। अंगने ते दूर रही करे न प्राणी पात है मुकुंद दत्त कहे यही आई रघुनाथ है। श्री चैतन्य ने इस शब्द सुनते ही तुरंत रघुनाथ दास का स्वागत किया। उन्होंने कहा यहाँ आओ। तब रघुनाथ दास ने उनके चरण कमल पकड़ लिए। कितने मुश्किल से प्राप्त हुए हैं है? चरण कमल पकड़ लिए किंतु महाप्रभु खड़े हो गए। अपने अहेतु की कृपा से उनका आलिंगन कर लिया, उठाया रघुनाथ दास को। प्रभु कहे आयस्ते हो धारीला चरण उठी प्रभु कृपा तारे कैला आलिंगन। रघुनाथ दास ने स्वरूप दामोदर को स्वामी इत्यादि सारे भक्तों के चरण कमलों की वंदना की। उन्होंने भी ये देखकर कि रघुनाथ दास पर महाप्रभु की विशेष कृपा है उनका आलिंगन किया। भगवान ने आलिंगन किया, सब भक्तों ने भी उनका आलिंगन किया। स्वरूपादि सब है भक्त चारण है बंदीला प्रभु कृपा देखिए सब आलिंगन कैला। श्री चैतन्य ने कहा कृष्ण की कृपा सबसे प्रबल होती है। 500 किलोमीटर 12 दिन में चले हैं तो एक दिन में 45 किलोमीटर हैं। अच्छा पूरा 45 निकलता। अच्छा एक दिन और देखो 3 दिन ही भोजन किया है, 12 दिन चलते रहे है ना। और जो है कहीं रात में रुक जाते थे कहीं गौशाला में कहीं पर लेट जाते और सवेरे फिर उठ करके चलने लगते हैं। कैसा जो है 41.66 किलोमीटर है एक दिन में चलना। और चैतन्य महाप्रभु जानते हैं अंतर्यामी है ना, जानते हैं। तो भगवान ने क्या कहा कि कृष्ण की कृपा सबसे प्रबल होती है। श्री चैतन्य कह रहे हैं और स्वयं तो कृष्ण है लेकिन वो अपना भक्त के रूप में जो है कह रहे हैं कृष्ण की कृपा सबसे प्रबल है। इसलिए कृष्ण ने तुम्हें भौतिकवादी जीवन की खाई से उबार लिया है जो छिद्र के समान है जिसमें लोग मल त्याग करते हैं, वहां से तुमको निकाला है श्री कृष्ण ने। प्रभु कहे कृष्ण कृपा बालिष्ठ सा महाते तो मारे काड़े ले बे सहिष्ठा गढ़ते हईते। रघुनाथ दास ने अपने मन में उतर दिया मैं नहीं जानता कि कृष्ण कौन है, हे प्रभु मैं तो केवल इतना जानता हूँ आपकी कृपा ने मुझे निकाला है। अपने मन में ही बोले वो, चैतन्य महाप्रभु से ऊपर से नहीं बोले, अपने मन में बोले। और चैतन्य महाप्रभु मन की बात भी सुनते हैं ना कि मैं तो कृष्ण को नहीं जानता ये आपने मुझे निकाला है। रघुनाथ दास अपने रघुनाथ माने कहे कृष्ण ना ही जाने तब कृपा काले आमा ए आमी मानी। महाप्रभु ने आगे कहा तुम्हारे पिता और ताऊ दोनों ही मेरे नाना नीलांबर चक्रवर्ती के भाई जैसे हैं अतः मैं उन्हें अपना नाना मानता हूँ। तुम्हारे पिता को मैं अपना नाना मानता हूँ चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ना। उस हिसाब से चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास उनके पिता जैसे हुए ना, उस संबंध में रघुनाथ दास चैतन्य महाप्रभु के पिता जैसे हुए। प्रभु कहे तो मार पिता जेठा दो ही जाने चक्रवर्ती संबंध हम आ जाना कारी माने। चूंकि तुम्हारे पिता बताऊ नीलांबर चक्रवर्ती के छोटे भाई हैं अतः मैं इस तरह परिहास कर सकता हूँ। हे रघुनाथ तुम्हारे पिता बताऊ भौतिक भोग रूपी नाली के मल कीट के तुल्य हैं, है? क्योंकि जिसे वे सुख मानते हैं वो भौतिक भोग के विष का महान रोग है। यदि भी तुम्हारे पिता बताऊ ब्राह्मणों को दान देते हैं और उनकी बहुत सहायता करते हैं किंतु तो भी वे शुद्ध वैष्णव नहीं हैं, वैष्णव प्राय हैं, प्राय वैष्णव हैं, शुद्ध वैष्णव नहीं है प्राय वैष्णव, वैष्णव प्राय। यद्यपि ब्राह्मण ने कार्य ब्राह्मण ऐसा है शुद्ध वैष्णव नहीं है वैष्णवीर प्राय। जो लोग भौतिकवादी जीवन के प्रति आसक्त हैं और आध्यात्मिक जीवन के प्रति अंधे हैं जिस तरह कर्म करते हैं कि अपने कर्मों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जन्म मृत्यु के चक्कर में बंध जाते हैं। श्री कृष्ण तुम्हें इच्छा से अच्छा 10 मिनट तो अभी कितना है 15 मिनट है, 5 मिनट और इसे कर सकते हैं। कुछ प्रश्नोत्तर भी करना है ना थोड़ा, चल जल्दी समाप्त करेंगे। जो लोग भौतिकता, अच्छा ये तो हो गया, श्री कृष्ण तुम्हें स्वेच्छा से ऐसे गर्हित जीवन से उबारा है, इसलिए कृष्ण की अहेतु की कृपा को का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे नैवे सहित कृष्ण उद्धारीला तोमा कान ना जाए कृष्ण कृपा रे महिमा। रघुनाथ दास को दुर्बल और मेला कुचला देखकर, सोचिए कितने दुर्बल और कितने मेले कुचले होंगे, 12 दिन तक स्नान भी नहीं किया ना, इसने स्नान किया होगा तो कपड़े तो नहीं धोए, स्नान किया होगा तो कपड़े नहीं धोए, दुर्बल मेला कुचल देखकर, क्योंकि उन्होंने 12 दिनों तक यात्रा की थी, उपवास रखा था, श्री चैतन्य का हृदय कृपा से द्रवित उठा, उन्होंने स्वरूप दामोदर से कहा, उन्होंने कहा हे प्रिय स्वरूप, मैं श्री रघुनाथ दास को तुम्हें सौंपता हूँ, तुम इसे कृपया अपने दास या पुत्र के रूप में रखो। रघुनाथ दास को वही जो नित्यान प्रभु ने कहा था वही हुआ ना सब। अब मेरे संज्ञों में 3 रघुनाथ हो गए हैं, आज से ये रघुनाथ स्वरूपेर रघुनाथ कहलाएगा। एक वैद्य रघुनाथ है, एक भट्ट रघुनाथ, एक दास रघुनाथ, तो ये स्वरूपेर रघुनाथ कहलाएंगे। ये कहकर श्री चैतन्य ने रघुनाथ दास का हाथ पकड़ लिया, उसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथों में सौंप दिया। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने ये कहते हुए रघुनाथ दास को स्वीकार किया कि हे प्रभु आपकी जो भी आज्ञा हो वही स्वीकार है। तब उन्होंने रघुनाथ दास का फिर से आलिंगन किया। मैं श्री चैतन्य के अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य को ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। रघुनाथ दास के ऊपर दयालु होकर महाप्रभु ने गोविंद से इस प्रकार कहा, चैतन्य रे भक्त वात्सल्य कही ते ना पारी, गोविंदे रे कहे रघुनाथे दया करी। रघुनाथ दास ने रास्ते में कई दिनों तक उपवास किया है। किससे बोल रहे हैं चैतन्य? गोविंद से बोल रहे हैं, और अनेक कष्ट उठाए हैं, इसलिए कुछ दिनों तक इसकी ठीक से देखभाल करो, जिससे जी भरकर खा सके। पूरा कवर कराओ इसको, खिला पिला करके पूरा कवर करो इसका, शरीर बहुत दुर्बल है। पथे इह कर या सेवा होते लंगन, कत दिन कर इहार भाल संतर्पण। तस्वीर चैतन्य ने रघुनाथ दास से कहा, जाकर समुद्र में स्नान करो, उसके बाद मंदिर में जगन्नाथ का दर्शन करो, फिर यहाँ आकर भोजन करो। ये कहकर श्री चैतन्य उठे, अपना दोपहर का कृत्य करने चले गए। रघुनाथ दास वहाँ उपस्थित सारे भक्तों से मिले। रघुनाथ दास पर श्री चैतन्य की अहेतु की कृपा देकर सारे भक्त आश्चर्यचकित रह गए, और उन्होंने उनके सौभाग्य की प्रशंसा की। रघुनाथ प्रभु कृपा देखी भक्त गण विस्मित है, यह करे तार भाग्य प्रशंसन। ठीक है, यहीं पर ही हम अब जो है विश्राम करते हैं। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, आपका प्रश्न है कि ये जो हम तिलक लगाते हैं ये ऊर्ध्वपुंड तिलक कहलाता है, ये तुलसी है। हाँ, तो क्या प्रश्न है?
जब तुलसी जी भगवान के चरणों में होती हैं, तो हम उनके तिलक में तुलसी जी क्यों लगाते हैं?
इसको हम तुलसी कह सकते हैं, ये तो जो है ना एक आकृति है जिस प्रकार की बनाई गई है, तो उसको हम तुलसी हम कह दें, वो अपनी इच्छा से हम कह सकते हैं, लेकिन तो आकृति है, ये ऊर्ध्वपुंड तिलक कहलाता है, ये आकृति इस प्रकार की है। अब तुलसी के पत्ते की आकृति में हम इसको तुलसी का पत्ता मान लें तो अलग बात है, तो वैसे तो कुछ वो नहीं है कि भाई तुलसी का पत्ता है, ये तुलसी का पत्ता नहीं है, लेकिन ये मंदिर है भगवान का, तो इस तरह से माना जाता है। ठीक है ना? हाँ जी। रघुनाथ दास के जो है इनकी सभा होती थी, इनके पिता और ताऊ जो है बहुत अच्छे मतलब श्रद्धालु थे, और साधु संत आते थे, तो उन सभा में जो है मतलब भगवान की चर्चा होती थी, और श्री चैतन्य का जो अवतार हुआ है तो वे भगवान हैं, तो ये भी विश्वस्त जो है शास्त्रों से कुछ जो लोग बताते थे तो इसको रघुनाथ दास सुनते थे। तो सुनने से ही होता है ना सब कुछ। आप जैसी संगति करेंगे वैसा ही आपको जो है मतलब विचार मिलेगा। तो आपके जो विचार हैं वो संगति से ही बनते हैं, है ना। तो रघुनाथ दास को जो है ऐसे घर में जन्म मिला था जहाँ कि साधु संत आते थे तो वहाँ पर खाते और रहते और जो है ठहरे रहते थे, और चाहे जितना दिन ठहरे हैं यात्रा करने वाले साधु संत हैं, और उनके वो सुनते भी थे, कथाएं सुनते थे साधु संतों के मुख से। तो रघुनाथ दास को जो है अवसर मिला इस प्रकार से सुनने का। जब तक हम सुने नहीं तब तक हमें कैसे हरिदास ठाकुर का विशेष रूप से संगति मिली रघुनाथ दास को, है ना। और कोई प्रश्न किसी का? मैं प्रश्न करूँ? हाँ आप बोले। वो हो सकता है, ऐसे मैंने कुछ पढ़ा नहीं है इस तरह का कि कोई ऐसा मतलब है इसका, लेकिन विष्णु का मंदिर है और हमारे शरीर में 12 स्थानों में हम ये भगवान के मंदिर बनाते हैं और अलग अलग नामों से ये मंदिर बनाते हैं। ये केशव का मंदिर, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ये 13 नामों से जो है भगवान के मंदिर बनाए। जैसे दिल्ली का मंदिर राधा पारसार्थी मंदिर है, वृंदावन का मंदिर है, कृष्ण बलराम मंदिर है। तो इस तरह से जो है हमारे शरीर में 13 अलग अलग नामों से जो है भगवान के मंदिर हैं। ये केशव जी का मंदिर है, नारायण का मंदिर है, माधव का मंदिर, गोविंद का मंदिर, इस तरह से 13 मंदिर, ठीक है ना। तो मैं प्रश्न करूं, रघुनाथ दास ने नित्यानंद प्रभु से जो है सीधे तो कुछ नहीं बोला, रघुनाथ दास ने नित्यानंद प्रभु से सीधे तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन राघव पंडित से कहा कि मेरी तरफ से बोल दीजिए। तो क्या बोलना था राघव पंडित को, क्या बताया बोलने के लिए? हाँ,
कि मैं श्री चैतन्य के चरण कमलों की प्राप्ति करूं।
और और मैंने प्रयास किया चैतन्य के चरणों की प्राप्ति का, किस प्रकार से? जैसे
जैसे चोर जैसे एक चोर करता है अपने आप से, वैसे मैं
कोशिश अपना बस इसलिए बताया उनको जो मैं पूछे हूँ उनके पास, सॉरी नित्यानंद प्रभु के पास मैं जाने का हूँ, तो इसीलिए उनको बताया जो मैं पूछे हूँ उनके पास।
नहीं, रघुनाथ दास ने चैतन्य चरणों की प्राप्ति के लिए जो प्रयास किया वो कैसे प्रयास किया उन्होंने बताया ना, कि कैसे प्रयास किया, कोई उदाहरण दिया? क्या उदाहरण दिया? नहीं, वो तो नित्यानंद प्रभु ने चोर कहा था तो वो तो हमने उस तरह की व्याख्या की, लेकिन रघुनाथ दास ने किस तरह से कहा एक उदाहरण और दिया। हाँ, एक बौना व्यक्ति चांद को पकड़ना चाहे, ऐसे मैंने प्रयास किया है तो मैं नहीं कर सकता, है ना, आपकी कृपा से, है ना। तो नित्यानंद प्रभु ने मतलब अपना गुण नहीं माना, अपना गुण नहीं दिखाते हैं नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा रघुनाथ दास, जब राघव पंडित ने कहा तो नित्यानंद प्रभु जो है सबके सामने बोल रहे हैं, तो उन्होंने रघुनाथ दास के बारे में क्या बोला नित्यानंद प्रभु ने? जी बोला, तुमने भोजन कराया। अच्छा, राघव पंडित ने क्या बताया था कि तुमको अब घर के बंधन से तुम जो है छूट जाओगे, हैं कैसे? चैतन्य नित्यानंद का उच्छिष्ट पा करके, है ना। तो नित्यानंद प्रभु ने ये दोनों बातें जो है एक सिद्धांत की हो गई ना, दो बातें सिद्धांत की हैं, है ना। एक जो है चैतन्य नित्यानंद का उच्छिष्ट खा करके तुम घर के बंधन से छूट जाओगे, और दूसरा सिद्धांत क्या है नित्यानंद प्रभु जी ने बताया भक्तों को? हाँ, प्रसाद खिलाना। तो दो सिद्धांत हैं जो कि मतलब बंधन से छुड़ाने वाले। राघव पंडित ने बताया कि गौर निताई का जो है तुम अगर उच्छिष्ट खाओगे तो, है ना। और नित्यानंद प्रभु ने बताया कि भक्तों को भोजन कराना, ठीक है ठीक है। श्री पानी हांडी चीटा दधी महामहोत्सव की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। अच्छा प्रद्युम्न प्रिया प्रभु कुछ बताना चाहते हैं आप लोगों को?